السلام علیکم، یہ پارٹ 5 ہے ناول بیچارہ شیزور۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز قمر خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف ابن صفی بی اے۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212131225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 5۔ وہ علامہ کے غائب ہو جانے والے شاگردوں میں دلچسپی لے رہا ہے، اسے میری تلاش ہے۔ اس رات موٹر ٹریننگ گراؤنڈ میں اسی سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ علامہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بیگم تصدق کی ماما کا سراغ ملا یا نہیں؟ نہیں۔ بیگم تصدق کو حراست میں لے لیجئے۔ کیوں؟ جب تک ماما کا سراغ نہ ملے ضروری نہیں سمجھتا۔ ماں کو رقم دے کر اسے روپوشی میں آمادہ کر لیا گیا ہوگا۔ تو اب تم بھی یہی کہہ رہے ہو، حالانکہ آج ہی بیگم تصدق کی موافقات میں بولتے رہے تھے۔ ضابطے کی کارروائی نہ کی گئی تو علامہ کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کا ہمدرد شہزور نہ جانے کیا کیا کر گزرے گا۔ تو تم اس دھماکے کو بھی اسی سے متعلق سمجھ رہے ہو؟ جی ہاں، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سامنے آؤں، ورنہ آپ اپنے 40 سالہ ملازم چوکیدار کو کوئی ایسا تخریب کار سمجھ لیجئے جس نے کسی خاص مقصد کے تحت اپنی کوٹھی میں آتش گیر مادہ چھپا رکھا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا، رحمان صاحب نے کہا۔ پھر چونک کر اسے گھورتے ہوئے بولے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری موٹر سائیکل باہر کھڑی ہے، اسے کمپاؤنڈ میں منگوا لیجئے گا، نمبر XY311 ہے، اور تم کسی طرح نکل جاؤں گا، موٹر سائیکل یہیں رہے گی۔ ڈورا کرسٹی اور مائیکل ظفر ملک کے بنگلے سے برآمد ہوئے تھے اور ان کا تعاقب شروع ہو گیا تھا۔ تعاقب کرنے والے نے ان کی گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی اپنی موٹر سائیکل سنبھال لی تھی، لیکن جیسے ہی اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھنا چاہا تھا، کسی نے ڈیڈونیا کی باڑھ کے پیچھے سے اس پر چھلانگ لگائی تھی اور کیریئر پر بیٹھتا ہوا بولا تھا، چلتے رہو۔ کون ہو تم؟ دوست چلو، کہیں وہ ہماری نظروں سے اوچھل نہ ہو جائے۔ ہچکچاہٹ کے ساتھ اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی تھی۔ تعاقب جاری رہا اور بلاخر اگلی گاڑی اسی عمارت کے سامنے جا رکی تھی جہاں ڈورا کرسٹی کا قیام تھا۔ موٹر سائیکل آگے نکل چلی گئی تھی۔ اب بھی جدھر میں کہوں ادھر چلو، تعاقب کرنے والے کے پیچھے بیٹھے ہوئے اجنبی نے کہا۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ تعاقب کرنے والے نے پوچھا۔ نہیں، تم مجھے نہیں جانتے۔ تو پھر کیا؟ مجھ سے جو کچھ کہا گیا ہے میں کر رہا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ کس نے کہا ہے؟ بحث کرو گے مجھ سے؟ تعاقب کرنے والے نے موٹر سائیکل سڑک کے نیچے اتار کر روک دی۔ یہاں اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اجنبی نے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، اجنبی نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں کوئی سخت سی چیز اس کے دائنے پہلو سے چبھنے لگی تھی۔ اجنبی بولا تھا، غالباً میں نے کہا تھا کہ جدھر میں کہوں ادھر چلو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ میری انگلی نہیں، ریوالور کی نال ہے۔ او، لیکن کیوں؟ جہاں لے چلو چپ چاپ چلتے رہو، وجہ بھی بتا دی جائے گی۔ کیا تم ایڈوکیٹ سلمانی کے پی اے نہیں ہو؟ ہاں، تو پھر چلو، اجنبی نے ریوالور کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی بائک موڑ لو۔ تعاقب کرنے والے نے تعمیل ہی کرنے میں عافیت سمجھی تھی۔ کچھ دیر بعد ساجد نے پوچھا تھا، آخر مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ تم لے جا رہے ہو مجھے، اجنبی بولا تھا۔ لفٹ لینے کا حیرت انگیز طریقہ ہے مسٹر، اور اگر دوسری کوئی بات ہے تو یہ بتا دو کہ میرے پرس میں زیادہ رقم نہیں ہے اور کلائی پر گھڑی بھی نہیں ہے۔ کلائی پر گھڑی نہ ہونا میرے لیے حیرت انگیز ہے، اجنبی نے کہا۔ جہاں اترنا ہو بتا دینا، میں بھی خاصا زندہ دل ہوں۔ اگر زندہ دل آدمی ہو تو سیدھے ستنام ہاؤس ہی کی طرف نکل چلو۔ کیا مطلب؟ تم وہیں تو جا رہے ہو، तुम क्या जानो, आखिर तुम हो कौन? रुकने की जरूरत नहीं, चलते रहो। अजनबी ने रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाकर याद दहानी कराई। यही बता दो, आखिर चक्कर क्या है? तुम्हें इस काम पर किसने लगाया है और क्यों? कमाल हो गया, ना लिफ्ट लेना चाहते थे, ना मुझे लूटना चाहते थे। बस ये मालूम करना चाहते हो कि मुझे किसने इस काम पर लगाया है। तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हें इससे क्या सरोकार, तो मैं साफ साफ बता दूंगा कि डोरा क्रिस्टी मेरे बॉस की महबूबा है, और मेरा बॉस ये जरूर जानना चाहेगा कि उसका कोई रकीब तो नहीं पैदा हो गया, अजनबी ने गुस्से लहजे में कहा। ओ, तो ये बात है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, अजनबी बोला। तुम्हारा बॉस कौन है? थोड़ी देर में मेरे वालिद का नाम भी पूछोगे। बहुत तंग मिजाज होते मालूम होते हो। मुनासिब यह होगा कि हम कहीं बैठकर कॉफी का एक एक कप पिए, अजनबी बोला। अच्छा ख्याल है, इस तरह मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी शक्ल भी देख सकूंगा, साजिद ने कहा। तुम तो मेरे कॉइफ से भी बखूबी वाकिफ मालूम होते हो। टिप टॉप की तरफ चलो, बहुत बहुत महंगी जगह है। अखराजात मेरे जिम्मे, अजनबी बोला। और इसी तरह रिवॉल्वर की नार पर ले चलोगे? रिवॉल्वर की नार नहीं हटा सकता। वैसे तुम मुतमईन रहो, कोई तीसरा उसे नहीं देख सकेगा। टिप टॉप की कंपाउंड में पहुंचकर साजिद ने अजनबी की शक्ल देखी थी, और एक सर्द सी लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। बड़ी खौफनाक आंखें थी, भद्दी सी मोटी नाक के नीचे इतनी गुंजान मूछें थी कि दहाना दिखाई नहीं देता था। अंदर चलो, वो गुर्राया था। जो कुछ पूछना हो यहीं पूछ लो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। यहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे अच्छी तरह पहचानते होंगे, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं एडवोकेट नादिर सुलमानी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। बेहतर है जज और वकील मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, उनसे यहाँ मुलाकात हो सकती है। जाहिर है कि मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं ऐसी जगहों पर देखा जा सकूं, और तुम ये नहीं चाहते कि ये बात सलमानी तक पहुंचे। जाहिर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि डोरा की निगरानी खुद सलमानी नहीं करा रहा। हरगिज़ नहीं। तो फिर बेगम साहिबा सलमानी साहब को इसका इल्म नहीं? वो क्यों इसकी निगरानी करा रही हैं? मैं नहीं जानता। अच्छा, तो फिर तुमने होटल से उन दिनों का ताकुफ क्यों किया था? उनमें एक दाढ़ी वाला हैप्पी भी था। दरअसल वो डोरा क्रिस्टी की निगरानी इसलिए करा रही हैं कि उसके एक मिलने वाले का पता मालूम कर सकें। उन्होंने बताया था कि वो दाढ़ी वाला एक हैप्पी है। बहरहाल, जब मैंने उन्हें इसका हुलिया बताया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं हो सकता। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, खौफनाक शक्ल वाला अजनबी सर हिलाकर बोला। खैर, तो क्या तुमने उस हैप्पी को सतनाम हाउस में कभी नहीं देखा, जिसका पता थेलमा मालूम करना चाहती है? नहीं, मैंने सतनाम हाउस में कभी कोई हैप्पी नहीं देखा। कोबरा कहलाता है, पहली बार नाम सुन रहा हूँ। खैर, तो तुम इस मुलाकात का जिक्र थेलमा से नहीं करोगे? मेरा बॉस समझता था कि कोई मर्द है तुम्हारी पुष्ट पर, लेकिन हैप्पी वाला चक्कर भी मेरे बॉस के लिए दिलचस्पी से खाली ना होगा। तुम्हारा बॉस कौन है? इसकी फिक्र ना करो, ये लो रखो, जहां दिल चाहे कॉफी पी लेना। अजनबी ने पर्स से 50 का एक नोट खींचा, उसके हाथ पर रखते हुए कहा, अगर उस हैप्पी का सुराग मिल जाए तो मुझे भी मुतल्ला करना। इस तरह तुम 100 100 के 5 कड़कड़ाते हुए नोट कमा सकोगे। साजिद ने उसके हाथ से नोट झपटते हुए कहा, तुमसे किस तरह रابطہ कायम कर सकूंगा? ढैंप मेरा नाम है और ये फोन नंबर। उसने उसे एक कार्ड दिया था जिस पर सिर्फ फोन नंबर छपा हुआ था। और हाँ, वो हाथ उठाकर बोला, अगर मैं ना मिलूं तो पैगाम दे देना। ऐसा ही होगा। एक बार फिर आगाह कर दूं कि थैलमा को हमारी मुलाकात का इल्म ना होने पाए। मुतमईन रहो। उस रात शहर में कई जगह धमाके हुए थे। और पुलिस हेडक्वार्टर अपने दूसरे मामलात को इरतवा में डालकर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। लोग खौफजदा थे, इन धमाकों से ज्यादातर सरकारी अफसरों को नुकसान पहुंचा था, इसलिए पुलिस ने वतन दुश्मन और तखरीब का कार अनासे की तलाश शुरू कर दी थी। सबके खराब रिकॉर्ड रखने वाले कुछ अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन रहमान साहब का महकमा शेजोर नामी किसी हैप्पी की तलाश में था। वैसे वहां उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। फैयाज को हैरत थी कि आखिर ये नया नाम कहाँ से आ टपका, लेकिन चूंकि हिदायत बराह रास्त रहमान साहब की तरफ से जारी हुई थी, इसलिए चू चरा की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। खुद फैयाज को दफ्तर छोड़ना पड़ा था और अब उसे बड़ी शिद्दत से इमरान की जरूरत महसूस हो रही थी। उधर इमरान दूसरे चक्करों में था। कुछ ही देर पहले साइको मेंशन के ऑपरेशन रूम में जूलिया का पैगाम मौसूल हुआ था, जिसे डिकोड करने के बाद दोबारा पढ़ रहा था। पैगाम के मुताबिक मियां तोकीर ने फरहाना जावेद से शादी की दरख्वास्त की थी और जल्द ही उसकी गार्डियन लामा दहशत की खिदमत में भी हाजिरी देने वाले थे, क्योंकि उनको उनकी दरख्वास्त पर फरहाना ने यही मशवरा दिया था। मियाँ तौकीर की ख्वाहिश है कि जूलिया भी उनके साथ चले। रवानगी का दिन मुकर्रर नहीं हो सका था, वक्त का तयन होते ही इतला दी जाएगी। साइको मेंशन से इमरान राना पेरिस पहुंचा था और ब्लैक जीरो को तलब करके उसे जूलिया का पैगाम सुनाया था। बकौल आगा हशर, चिड़िया फुदक के बाज के पंजे में आ गई। मुझे पहले ही खदशा था, ब्लैक जीरो कुछ सोचता हुआ बोला, इसलिए मैंने मियाँ तौके की गुमशुदगी पर जोर दिया था। सवाल तो ये है कि तुम्हारी तजवीज को बरवाए कार कैसे लाया जाए? रास्ते ही से ले उड़े? ये से उसी सूरत में मुमकिन होगा जब ट्रेन से सफर किया जाए। अगर फिशियाला के हवाई अड्डे से रवाना हुए तो यहाँ के एयरपोर्ट ही पर उनसे मुलाकात हो सकेगी। वैसे मेरा यही अंदाजा है कि मियाँ तौकीर ट्रेन में वक्त नहीं जाया करेंगे। यहाँ के एयरपोर्ट पर भी कोशिश की जा सकती है। उस सूरत में जब मियाँ तौकीर इल्लामा या फरहाना को अपनी आवाज से मुतल्लक किए बगैर रवाना हो जाएंगे। जूलिया तो हमें रवानगी के वक्त से जरूर मुतल्लक कर देगी, देखा जाएगा। इमरान ने शानों को जनबिश थी। चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अभी सारे मामला तुम संभालोगे, मैं तो चला, फोन पर रابطہ रखूंगा। फिर उसने उसे साजिश से मुतालिक हिदायत दी थी और ढैम के नाम उसके किसी मोहतक फोन कॉल के बारे में बताते हुए कहा था, उसका वो पैगाम रिकॉर्ड कर लेना, बहुत बेहतर। फिर वो पीटर के कमरे में आया था, जिसकी हालत पहले से मुख्तलिफ नजर आ रही थी। इमरान को उसने इस तरह देखना शुरू किया था जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या हाल है? इमरान ने पूछा। ठीक है, खुदा का शुक्र है, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे क्या पहचानोगे? बहुत छोटा सा था जब मुझे देखा था तुमने। खुदा जाने मुझे कुछ भी याद नहीं, ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। इमरान ने उसे घूर कर देखा था, लेकिन उसका चेहरा सपाट नजर आया, आंखों से लातौलकी जाहिर हो रही थी। फिर अब क्या ख्याल है? वो कुछ देर बाद बोला। ख्याल? कैसा ख्याल? शायद तुम्हें शराब नहीं मिली। शराब नहीं तो मैं शराब नहीं पीता, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी पी हो। या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? कतई नहीं, लोग बहुत मेहरबान हैं, कहते हैं कि जब तुम अच्छे हो जाओगे तो तुम्हें बाहर ठहरने की इजाज़त मिल सकेगी। इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर हिलाया था और वापसी के लिए मुड़ गया था। शैला के पास पहुंचा तो वो इस तरह मुंह फुलाए बैठी नजर आई जैसे इसका कानूनी हक रखती हो। बुरके में चलना पड़ेगा मेरे साथ, इमरान खनकार कर बोला। बस इतनी सी बात? मैं तो समझी थी शायद टुकड़े टुकड़े करके किसी चीटी में रखोगे और वो वो पेटी तुम्हें अपने सर पर उठानी पड़ेगी। मैं दाढ़ी और शेरवानी में कैसा लगूंगा? बहुत अच्छे, दोनों इस सज धज से निकलेंगे। और तुम राहगीरों को रोक रोक कर कहना, एक अर्ज है जनाब, आली ट्रेन पर सफर कर रहे थे, किसी ने जेब से बटुआ निकाल लिया, सारी रकम और रेल के टिकट उसी में थे। लाख कहा टिकट चेकर से, लेकिन उसने यकीन ना किया, गाड़ी से उतार दिया, वापसी के लिए मदद की दरख्वास्त है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो इसके लिए भी तैयार हो, लेकिन अब देर ना करो। क्या तुम बुरके के बाद संजीदगी से कर रहे थे? हाँ, यही मुनासिब होगा। कहाँ चलूँ, लंबा प्रोग्राम है, बातें फिर हो जाएंगी। फिर उसने ब्लैक जीरो से पीटर को साइको मेंशन मुंतकिल कर देने के लिए कहा था और शबा जाहिर किया था कि वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। बन रहा है जनाब, ब्लैक जीरो ने कहा। हकीकत भी हो सकती है, साइकोमेंशन के स्पेशलिस्ट ही फैसला कर सकेंगे। बहुत बेहतर, आज ही मुंतकिल कर दिया जाएगा। 2 दिन शहर में मुख्तलिफ जगहों पर धमाके हुए थे और तीसरा दिन पुरसुकून गुजर गया था। चौथी रात इल्लामा बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि फोन की घंटी बजी थी। नागवारी के आसार उसके चेहरे पर जाहिर हुए थे, लेकिन उसने रिसीवर उठा लिया था। मैं फरहाना बोल रही हूँ जनाब, दूसरी तरफ से आवाज आई। ओ अच्छा, क्या बात है? मैं बहुत खाइफ हूँ जनाब। खाइफ हो? इल्लामा के लहजे में हैरत थी। किससे? मैंने अभी अभी उस लड़की को देखा है। किस लड़की को? वो जो अचानक मर गई थी, यास्मीन। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं सच कह रही हूँ, ख्वाब नहीं देखा और ना कोई नशा करती हूँ। अभी 15 मिनट पहले की बात है। सफेद लिबादे में मुलविस थी और उसके जिस्म से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। क्या तुम उससे बहुत ज्यादा मुतासिर थी? सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर वो तुम्हारे पाए बाग में क्या कर रही थी? मैं समझ में कुछ नहीं आया। कुछ बोली थी? नहीं जनाब, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी किस्म का इशारा कर रही हो। महज वहमा, अपने जहन को फजूलियत से मुतासिर ना होने दो। रूह जिस्म के बगैर महज एक तसव्वुर है। अगर मजहबी नुक्ता नजर से देखो तब भी किसी रूह की दोबारा तजस्सीम सूर फूकने जाने से कबल मुमकिन नहीं। हो सकता है जनाब, दूसरी तरफ से मसमहल सी आवाज आई थी। तो मुतमईन नहीं हुई? खैर, मैं पहुंच रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इलामा रिसीवर क्रेडल पर रख कर बरामदे में निकल आया। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी यूनिवर्सिटी कैंप्स की तरफ जा रही थी और वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। इसका चेहरा पुरसुकून नजर आ रहा था। इस अजीब और गरीब इतला पर वो आज किसी किस्म की जहनी इंतशार में मुब्तला नहीं हुआ था। हालांकि उस रात जब फोन पर यास्मीन की रूह से हम कलाम हुआ था तो इसकी हालत गैर हो गई थी। फरहाना जावेद सचमुच खौफजदा नजर आई, चेहरे की रंगत जर्द हो गई थी। तुमने वो भूत किस जगह देखा था? इल्लामा ने उससे पूछा। फरहाना ने पाए बाग के एक गोशे की तरफ इशारा किया। तो उसने तुम्हें किस किस्म का इशारा किया था? जी हाँ, उसके बाद, लेकिन ठहरो, वहां तो अंधेरा है, बरामदे की रोशनी उस जगह तक नहीं पहुंच रही। मैंने शायद आपको ये नहीं बताया था कि खुद उसके जिस्म से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। उस रोशनी में वो पूरी तरह दिखाई देती थी, फिर दफातन गायब हो गई थी। तुमने जिस्म से फूटने वाली रोशनी का जिक्र किया था, बहरहाल तुम उसे वहम समझने पर तैयार नहीं हो। जी नहीं, कतई नहीं, मैंने जागती आंखों से देखा था। चलो वहां चलते हैं, देखें शायद कदमों के निशानात भी छोड़ गई हो। अगर वो मुजस्सम थी तो कदमों के निशानात भी होंगे। इस वक्त उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, कल दिन में देख लूंगी। मैं साथ हूँ तुम्हारे, बच्चों सी बातें ना करो। वो नहीं मानी थी, बरामदे में खड़ी रही थी और लामा टॉर्च रोशन किए हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ गया था। बहुत गौर से आसपास की जमीन का जायजा लेता रहा, लेकिन किसी किस्म के भी निशानात ना मिल सके। थक हार कर फिर बरामदे में वापस आ गया। अगर उसे भूत तस्लीम भी कर लिया जाए तो तुम्हारे बंगले में उसका क्या काम? इल्लामा ने कुछ देर बाद कहा। मैं खुद नहीं समझ सकती जनाब, तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि यहाँ का एक ब्लैक मिरर मेरे पीछे पड़ गया है और इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह यास्मीन की मौत की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दे। वो कौन है? खुदा जाने, ब्लैक मिरर कभी अपनी असल शख्सियत नहीं जाहिर करते। आखिर वो किस बिना पर कह सकता है कि यास्मीन की मौत की जिम्मेदार आप हैं? यही बात मेरी समझ में भी नहीं आई। और अगर उसे भानमंत्री का तमाशा ही दिखाना था तो मुझे दिखाता। तुम्हें क्या सरोकार इन बातों से? तो क्या सचमुच? वो जल्दी जल्दी सांस लेती हुई बोली, बेवकूफी की बातें मत करो, उसकी मौत से मुझे क्या फायदा पहुंचता? चलिए अंदर बैठिए, मैं कॉफी बनाती हूँ। क्या वो बूढ़ी औरत आजकल नहीं है जो किचन में काम करती थी? उसे मलेरिया हो गया था, मैंने आराम करने को कहा है, इसलिए खुद ही सारे काम कर रही हूँ। मजबूरी है, वो उसे स्टिंग रूम में लाई थी और खुद किचन की तरफ चली गई थी। इलामा खामोश बैठा स्टिंग रूम में रखी हुई आरायशी मसनूआत का जायजा लेता रहा। दफातन फोन की घंटी बजी थी और वो चौंक उठा था, हाथ बढ़ाया था रिसीवर की तरफ और फिर रुक गया था। घंटी बजती रही। आखिर फरहाना ही दौड़ती हुई कॉल रिसीव करने आई थी। हेलो, ओ, रिसीवर उठाकर माउथ पीस में बोली, जी हाँ, फरमाइए। ओ जी हाँ, तशरीफ रखते हैं, बेहतर, 1 मिनट। फिर उसने रिसीवर इनामा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपकी कॉल है। मेरी कॉल यहाँ? कौन है? कोई खातून है। इलामा ने बुरा सा मुंह बनाकर उसके हाथ से रिसीवर लिया था और अपना नाम बताकर दूसरी तरफ से कुछ सुनने का मुंतशर रहा था। प्रोफेसर, नुस्वानी आवाज आई, मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी, लेकिन तुमसे ताल्लुक रखने वाले दूसरे लोग मुझे देखते रहेंगे। तुम जो कोई भी हो, मुझे बावर नहीं करा सकती कि तुम यास्मीन की रूह हो। लिहाजा ये ड्रामा खत्म करो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो जो दुनिया में रह गए हैं तुम्हारे दस्तबर्द से महफूज रहें। बड़ा नेक ख्याल है, लेकिन तुम ये नेक काम किस तरह अंजाम दोगी? तुम्हारा वो शिकार महफूज हो गया है जिसे शादी के बाद मारने के इरादा रखते थे। क्या बात हुई? आखिर अगर ये बात ना होती प्रोफेसर, तो मैं इस वक्त फरहाना के बंगले में क्यों नजर आती? मैं तुमसे बहुत करीब हूँ। इलामा ने कनखियों से फरहाना की तरफ देखा था और वह जल्दी से बोली थी, ओ मैं चलूं, पानी उबल गया होगा। वो चली गई थी और इलामा फिर रूह की बात सुनने लगा था। वो कह रही थी, इस तरह फरहाना भी महफूज हो गई है। क्या मैं इसे मजलूब की बड़ समझूं? इलामा झिझलाकर बोला, नहीं, यकीन कर लो कि मैं यास्मीन हूँ और आलिम अरवाज से बोल रही हूँ, वरना तुम्हारी दुनिया में कौन जानता है कि तुम पीर अली के बेटे हो। मत बकवास करो। दफातन इल्लामा के पूरे जिस्म में थरथरी पड़ गई थी। अब तुम्हें मियाँ तौके का सुराग नहीं मिल सकेगा। शट अप, इल्लामा हलक फाड़ कर धाड़ा था और दूसरी तरफ से सिलसिले मुनकता होने की आवाज आई थी। वो इसी बार रख कर लड़खड़ाता हुआ सोफे तक आया, लेकिन फोन की तरफ ऐसी नजरों से देखे जा रहा था जैसे हकीकतन उसमें से कोई गैर मर्दी शेर निकल कर मादी हैत इख्तियार कर लेगी। फरहाना ट्रॉली धकेलते हुए स्टिंग रूम में दाखिल हुई थी। उसकी आहट पर वो चौंका था और वो से उसे हैरत से देखती हुई बोली थी, आप ठीक तो हैं? हाँ, उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। कोई बुरी खबर थी? यास्मीन की रूह फोन पर मुझसे मुखातिब थी। नहीं, फरहाना चलते चलते रुक गई। क्या अहमियत है इसकी? कॉफी पिलाओ, इसने लामा ने कहा और जेब से रुमाल खींचकर चेहरे का पसीना खुश करने लगा। फोन पर पर क्या कह रही थी? फरहाना ने पूछा। मियाँ तौकीर को मेरी 10 पर 10 तबर से महफूज रखना चाहती है, लिहाजा अब मुझे उसका सुराग नहीं मिलेगा। मैं नहीं समझी। खत्म करो, कॉफी लाओ। फरहाना ने कॉफी उंडेल कर प्याली उसकी तरफ बढ़ाई थी। एक घूंट लेकर प्याली मेज पर रखता हुआ बोला, तो वो कल यहाँ पहुंच रहा है। खत में यही लिख रहा था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि कयाम कहाँ करेगा। हमेशा कांटी नेशनल में ठहरता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? रू अपना काम कर चुकी है। मैं नहीं समझी। वो ब्लैकमेलर शेला और पीटर का सुराग आज तक नहीं मिल सका। वो दोनों उसी के कब्जे में हैं। फरहाना की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई थी और चेहरा खिल उठा था। इलामा ने ये तब्दीली महसूस कर ली और उसे ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे इस नौयत का खामोश इजहार मसरत उसे जरा बराबर भी पसंद न आया हो। तुम इस पर खुश हो रही हो? बहुत ज्यादा। ये अपनी पसंद या कुछ भी नहीं, मैं आदमी से मायूस होता जा रहा हूँ। क्यों जनाब? किसी किस्म की भी तबीयत उसे जज्बात की गुलामी से रिहाई नहीं दिला सकती। फरहाना कुछ ना बोली। इल्लामा ने खामोशी से कॉफी खत्म की थी और उठ खड़ा हुआ था। क्या आप नाराज हैं मुझसे? फरहाना घुघियाई, लेकिन वो कुछ कहे बगैर बाहर निकला चला आया था। फरहाना भी पीछे पीछे आई थी। वो गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी बैक करके कंपाउंड से निकाली। फरहाना जहाँ थी वहीं दम बखुद खड़ी रही। गाड़ी सड़क पर पहुंचते ही तेज रफ्तार से मगरिब की जानिब रो रो रोदाद हो गई थी। दीवानों की तरह ड्राइविंग कर रहा था और साथ ही बड़बड़ाता भी जा रहा था। लफ तफ है मेरी जिंदगी पर, अभी तक उस मर्दूत को तलाश नहीं कर सका। जाग शहजोर, जाग शहजोर। वो इतने जोर से चीखा था कि बिलाखिर उसे खांसी आ गई थी। कार खासी तेज रफ्तारी से सड़कें नापती रही। फिर शायद उसने उसे किसी खास रास्ते पर डाल दिया था। इस गाड़ी में अंदर और बाहर कई अकब नुमा आईने लगे हुए थे। इनकी मौजूदगी में ख्वा किसी भी अंदाज में ताकुब किया जाता, इलामा की नजर से पोशीदा ना रह सकता। शायद इस वीरान सड़क पर आ निकलने का यही मकसद था कि वो ताकुब करने वालों पर नजर रख सके। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी पर शहर की तरफ मोड़ ली थी। इत्मीनान हो गया था कि उसका ताकुब नहीं किया जा रहा। और फिर शहर की जागती जगमगाती हुई सड़कों से गुजरते वक्त एक बार फिर उस पर बड़बड़ाहट का दौरा पड़ा था। इलामा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और शहजोर फौलाद की चट्टान है, फौलाद की चट्टान है। आखिरी आदमी तो कि जिंदा नहीं रह सकता, ख्वाह 7 पर्दों में छुपा दिया जाए, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो ब्लैकमेलर मेरी असलियत से वाकिफ हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है इससे? वो किसी तरह भी इसे साबित नहीं कर सकेगा और अब मैं उसे भी देखूंगा। गाड़ी उसको भी उस कोठी की तरफ जा रही थी और फिर अचानक उसे मालूम हुआ कि अब एक गाड़ी उसका ताकुब कर रही है। वो जहरीली सी हंसी के साथ बोला था, आओ आओ, आज तुम्हारी शामत ही आ गई है, तुम जो कोई भी हो। कुछ दूर चलने के बाद उसने अचानक ब्रेक लगाए थे और पिछली गाड़ी ने हॉर्न देना शुरू कर दिया था। फिर वो थोड़ी सी कतराकर उसकी गाड़ी के करीब ही से आगे निकल गई। ड्राइव करने वाले की पुश्त ही देख सका। अब वो खुद उस गाड़ी का ताकुफ कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद उस पर हंसी का दौरा पड़ा था, क्योंकि उसने एक मोड़ पर ड्राइवर की शक्ल देख ली थी। वो कोई औरत थी और औरत भी। उसने होंठों पर जबान फेरी और दोनों गाड़ियों का फासला कम करने की कोशिश करने लगा और फिर एक जगह मौका देखकर अपनी गाड़ी उससे आगे निकाल ले गया। ओ तो ये है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाया था। गाड़ी आगे निकालने वक्त उसने उसकी शक्ल देख ली थी, लेकिन वो उसका ताकुब क्यों कर रही थी? बाहैसियत इल्लामा दहशत वो उसके वाकफों में से नहीं था। फिर एक बड़ा सा सवालिया निशान जहर में उभरा था। यह नॉवेल बेचारा शहजोर का बकिया हिस्सा पार्ट 6 में समाप्त फरमाए।